हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दूसरी तरफ अर्णव वापस ऑफिस आ चुका था और इस वक्त अपने कैबिन के ग्लास वॉल के सामने खड़ा धृति के बारे में सोच रहा था। उसकी मासूमियत हर बार उसे एहसास करवाती थी कि जो इल्ज़ाम उस पर लगाए जा रहे हैं, जिस गुनाह की सज़ा उसे दी जा रही है, वो उस गुनाह को कभी नहीं कर सकती। वो इल्ज़ाम सच नहीं हो सकते, पर आंखों देखे को झुठलाना भी कहाँ आसान होता है। एक तरफ उसका दिल था जो धृति को गुनाहगार मानने से इनकार कर रहा था, तो दूसरी तरफ दिमाग था जो बहुत पहले उसे दोषी करार दे चुका था। अर्णव कुछ पल अपने दिल और दिमाग के बीच उलझा रहा, फिर आखिर में दिमाग की दलीलों के आगे दिल की आवाज़ दब कर रह गई और अर्णव के चेहरे पर कड़वाहट उभर आई। शाम को जब अर्णव ने कमरे में कदम रखा तो धृति बेड पर बैठी नजर आई। उसने खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था और जाने किन्हीं सोच में गुम थी। चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे और एक ही दिन में उसका चेहरा उतर गया था, जैसे बहुत बीमार हो। दरवाजे की आवाज़ धृति के कानों में पड़ी, तब कहीं जाकर वो होश में लौटी और तुरंत ही निगाहें गेट की तरफ घुमा लीं। धृति और अर्णव दोनों की निगाहें टकराईं, पर अगले ही पल अर्णव ने बड़ी ही बेरुखी से उस पर से निगाहें फेर ली और सोफे की तरफ बढ़ गया। धृति की निगाहें अब भी उसी पर टिकी थीं। अर्णव को अपनी टाई खोलते देखकर धृति ने ब्लैंकेट साइड किया और बेड से उतरते हुए बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, फिर आपकी कॉफ़ी ले आऊँगी। अर्णव जो अपनी टाई कबर्ड की तरफ कदम बढ़ाने वाला था, उसके कदम हवा में ही ठहर गए। उसने बिना एक सेकंड का वक्त गवाए पलटकर धृति को देखा और सख्त स्वर में बोला, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कुछ भी करने की। तीन दिन के लिए तुम्हें हर काम से छुट्टी मिली है। ना तुम्हें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत है और ना ही ऑफिस आने की ज़रूरत है। यहाँ रहकर आराम करो, क्योंकि बीमार इंसान को परेशान करने में वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बनाने के लिए तो मैं हूँ ही। अर्णव की बात सुनकर धृति के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। वो पहले तो आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखती रही, फिर ठंडी आँ भरते हुए बिना किसी भाव के बोली, मैं जिंदा हूँ अभी, तो आपको मुझ पर तरस खाने या दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब भी सह सकती हूँ आपका टॉर्चर, तो आप बस अपनी दुश्मनी निभाइए। मेरी फ़िक्र करने के लिए मैं हूँ। अब तक सब सहती आई हूँ, तो आगे भी सब सह लूँगी। वैसे भी ये हर महीने का है, और जब अब तक इसका बहाना बनाकर मैंने अपने किसी कर्तव्य को पीठ नहीं दिखाई, हमेशा सब करती रही, तो आगे भी कर सकती हूँ। इसलिए आपको मुझ पर कोई एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नफ़रत है मुझसे और आप सिर्फ मुझे दर्द देना चाहते हैं, तो दीजिए मुझे दर्द। वादा रहा उफ तक नहीं करूँगी और ना ही आपसे कोई सवाल करूँगी। ये सब कहते हुए धृति की आंखों में नमी उतर आई, पर उसने आंसुओं को छलकने नहीं दिया और अपनी बात पूरी करके कबर्ड की तरफ बढ़ गई। उससे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा अर्णव उसके चेहरे और आंसुओं से भीगी आंखों को देखकर सोच में पड़ गया। धृति ने कपड़े निकालकर बेड पर रखे और कमरे से बाहर निकल गई। अर्णव के कानों में जब दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पड़ी, तब कहीं जाकर वो अपनी सोच से बाहर आया और खुद से ही बोला, उसकी मासूमियत पर मत जा, सब कुछ धोखा है। उसकी बातों में दर्द, उसका मासूमियत भरा चेहरा, उसके आंसू, सब छलावा है। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके वो शरीफ इनोसेंट लड़कों को अपने जाल में फंसाती है, पर तुझे इसकी मासूमियत के जाल में नहीं फंसना है। भूल मत इसने क्या किया है तेरे साथ और इसके वजह से क्या खोया है तूने। तेरे मन में इसके लिए सिर्फ नफरत होनी चाहिए, किसी दया भाव के लिए तेरे मन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अतीत की बातों को याद करते हुए अर्णव की आंखों में एक बार फिर धृति के लिए बे इंतहा नफरत झलकने लगी। चेहरा कड़वाहट से भर उठा। उसने कपड़े लिए और नहाने चला गया। कुछ देर में वो वापस आया, ठीक उसी वक्त धृति ने भी कमरे में कदम रखा। अर्णव ने एक नज़र उसे देखा, फिर बेरुखी से उस पर से निगाहें फेर लीं, पर उस एक पल की निगाहों के मिलने में धृति ने उसकी आंखों में अपने लिए एक बार फिर नफरत देख ली थी। उसने ठंडी आँ भरी और उसके पास चली आई। आपकी कॉफ़ी मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। अर्णव ने बेरुखी से जवाब दिया और अपना लैपटॉप बैग लेकर पूल साइड चला आया। धृति बस उसे देखती ही रह गई, फिर मायूस सी कॉफी लेकर वापस नीचे चली आई। शीला ने उसे डिनर बनाने से रोकने की कोशिश भी की, पर धृति रोज की तरह अपने कामों में लग गई। डिनर के वक्त आज फिर अर्णव ने उसे तंग करना चाहा, पर धृति के चेहरे पर दर्द की रेखाएं देखकर उसने खामोशी से डिनर कर लिया और कमरे में चला आया। कुछ देर बाद धृति ने कमरे में कदम रखा और एक नज़र बेड पर बैठे अर्णव को देखने के बाद रोज़ की तरह पूल साइड जाने लगी। अभी वो कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि उसके कानों में अर्णव की सख्त रौबदार आवाज़ पड़ी। आज तुम यहाँ सोओगी, क्यों? धृति ने तुरंत ही उसकी तरफ पलटते हुए सवाल किया, जिसे सुनकर अर्णव ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि मैंने कहा है, इसलिए अब और कोई सवाल जवाब नहीं, चुपचाप यहाँ आकर लेटो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और पूल साइड जाने के लिए एक भी कदम बढ़ाया तो तुम्हें उठाकर पूल में फेंक आऊँगा, फिर सोती रहना आराम से पूल में। अर्णव ने कठोर लहजे में धमकी दी, जिसे सुनकर धृति की आंखें अविश्वास से फैल गई, मुंह हैरानी से खुला का खुला ही रह गया। अर्णव ने आंखों से ही उसे बेड की तरफ आने का इशारा किया और चेतावनी दी, जिसे समझते हुए धृति ने परेशान निगाहों से उसे देखते हुए कहा, मैं नहीं सोऊंगी आपके साथ यहाँ, आप सोइए अपने कमरे में, मैं बाहर ही ठीक हूँ। क्यों, मेरे साथ सोने में क्या परेशानी है? पति हूँ मैं तुम्हारा और तुम पत्नी हो मेरी, फिर मेरे साथ इस कमरे में सोने से ऐतराज़ क्यों है तुम्हें? अर्णव ने सख्त लहजे में सवाल किया और भौहें सिकोड़कर उसे देखने लगा। अर्णव का सवाल सुनकर धृति ने उस पर से निगाहें फेर ली और धीमे स्वर में बोली, आप ऐसे पति हैं जिससे डर लगता है मुझे। आम तौर पर लड़कियों को उनके पति के साथ शायद सेफ महसूस होता होगा, इसलिए उन्हें उनके साथ एक कमरे में रहने से कोई परेशानी नहीं होती होगी, पर मुझे परेशानी है। आपने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके वजह से मैं आप पर विश्वास कर सकूं, आपके साथ सहज हो सकूं। आपके साथ सबसे ज्यादा असुरक्षित और असुरक्षित महसूस करती हूँ मैं यहाँ आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं फिर से अपनी इज्जत पर आँच आते नहीं देख सकती। भले आप पति हैं मेरे, पर जबरदस्ती के पति हैं, और मैं नहीं रह सकती आपके साथ, नहीं जी सकती हर पल इस डर के साए में कि आप कुछ गलत कर देंगे मेरे साथ। इतना कहकर धृति खामोश हो गई और बिना अर्णव के जवाब का इंतजार करे कदम आगे बढ़ा दिए। अर्णव की गहरी निगाहें धृति के चेहरे पर टिकी थीं। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर गहरे विषाद के भाव पसरे हुए थे। शब्दों में उसका पीड़ा, दर्द, बेबसी, मजबूरी और तकलीफ झलक रही थी। धृति ने कम शब्दों में उसे बता दिया था कि उसे उस पर भरोसा नहीं था, जिसकी वजह उसका खुद का अब तक का व्यवहार था। जाने क्यों, पर धृति के शब्दों का गहरा असर हुआ अर्णव पर। उसके दिल में कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ और चेहरे पर नाराजगी के भाव उभर आए।
अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ गलत करना ही होता तो शादी की पहली रात ही कर चुका होता, और पूल के साइड आना मेरे लिए इतना भी मुश्किल काम नहीं। मैं वहां आकर भी तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता था, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम उस काबिल ही नहीं कि मैं तुम्हें अपने करीब आने का हक दूं, और न ही तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें छूने को मचलूं। मैं तुम जैसी लड़की को छूकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। हर जगह मुंह मारने की आदत तुम्हारी होगी, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे उस जिस्म की कोई चाह नहीं जो पहले ही जाने कितनों की रातों को रंगीन बना चुका है। घिन आती है मुझे तुमसे, और मैं कभी ऐसी लड़की को खुद पर अधिकार नहीं दूंगा जिसका अनगिनत लड़कों के साथ संबंध रहा हो, जिसके जिस्म को पहले ही कई लड़कों ने छुआ हो। इसलिए तुम्हें मुझसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं गलती से भी तुम्हारे साथ कुछ करके खुद को अपनी ही नज़रों में नहीं गिराऊंगा। अर्णव की बातें और उसके लगाए इल्ज़ाम सुनकर धृति पहले तो स्तब्ध सी आंखें फाड़े उसे देखती ही रह गई। देखते ही देखते उसकी आंखों में नमी तैर गई। अर्णव के लगाए इल्ज़ाम उसके सीने को छलनी कर गए। अपने चरित्र पर उठती उंगलियां उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसकी आंखों से आंसू छलक कर उसके गालों पर लुढ़क गए, जिन्हें अपनी हथेलियों से पोंछते हुए धृति ने रोंधे गले से उससे सवाल किया, आप मेरे बारे में इतनी गंदी बातें कैसे सोच सकते हैं? बिना मेरे बारे में कुछ भी जाने कैसे मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगा सकते हैं? कैसे मेरे चरित्र पर सवाल उठा सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं आप कि मैं ऐसी लड़की होंगी? मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप मेरे ज़िंदगी में आने वाले पहले मर्द हैं। आप वो पहले आदमी हैं जिसने मेरे जिस्म को छुआ है, मेरे करीब आया है, वो भी मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर। आपसे पहले मेरा किसी लड़के से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रहा। फिर भी आपने मुझे एक ऐसी लड़की बना दिया जो लड़कों के साथ सोती है, जिसकी कोई इज्जत ही नहीं। अगर इतनी ही घिन थी आपको मुझसे और यही सोचते थे आप मेरे बारे में, तो शादी ही क्यों की आपने मुझसे? धृति की सच्चाई आज फिर उसकी आंखों में झलक रही थी। उसके आंसू, दर्द से सना चेहरा, भारी आवाज, चीख चीख कर बता रहे थे कि वो गलत नहीं, पर अर्णव की आंखों पर बंधी नफरत और गुस्से की पट्टी उसे धृति की सच्चाई देखने ही नहीं देती थी, और देखता भी तो उसे सब दिखावा, धोखा और छलावा लगता। आज भी यही हुआ। जहां धृति का चेहरा पीड़ा और दर्द से सना था, वहीं अर्णव के चेहरे पर सर्द भाव मौजूद थे। उसने खामोशी से धृति की पूरी बात सुनी और भावहीन सा बोला, इस सवाल का जवाब तुम बहुत अच्छे से जानती हो, और एक ही बात को बार बार रिपीट करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और न ही तुमसे बेकार की बहस में उलझने के लिए फालतू वक्त है मेरे पास। इसलिए अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ आकर सो जाओ। डोंट वरी, मेरी चॉइस इतनी भी खराब नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ करूँ, वो भी तब जब तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं। अर्णव ने एक बार फिर अपने शब्दों से उसे जलील कर दिया। धृति के आत्मसम्मान पर हुआ यह प्रहार वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, और न ही अब उसने अर्णव को अपनी सच्चाई और प्योरिटी पर विश्वास दिलाने की कोशिश की। उसने हीन निगाहों से अर्णव को देखा। आज अपने बारे में उसकी सोच जानकर उसे अर्णव की सोच से घिन आने लगी थी। धृति कुछ पल खामोशी से उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे पूल साइड जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। अर्णव ने भी अब उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस उसकी आंखों में झलकते दर्द, बेबसी, पीड़ा को समझने की कोशिश करता रहा। पूल साइड आकर धृति की रुलाई छूट गई, और अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर वो वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ी।